लब्धिकार के ग्रंथ के आधार से हम ये बात कर रहे हैं। हमने शोक संलब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि, यहाँ तक हम आए हैं। प्रायोग लब्धि तक आए तो शोक संलब्धि में हमने देखा था कि जिस वक्त, जिस काल में अप्रशस्त, सभी अप्रशस्त ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव प्रति समय अनंत गुणा हीन होते जाता है और हीन होकर ही हृदय में आता रहता है, इस काल में सूक्ष्म लब्धि होती है और इसके फलस्वरूप जो कषाय और मिथ्या से भी मंद होते हैं और मंद होकर हृदय आता है तो जीव के भी यहाँ विशुद्ध परिणाम होते हैं, धर्मानुराग रूप उसकी प्रवृत्ति होती है तो उसको कहते विशुद्धि लब्धि, यानी कषायों की मंदता होती है तब जाकर उपदेश सुनने की भावना भी होती है और कोई सुनाना चाहता है तो शांति से समझने की भी तैयारी होती है। नहीं तो ऐसे जो तीव्र कषाय जीव है उनको ये कोई आत्मा परमात्मा की सर्वनाथ की या देव शास्त्र गुरु की या अन्य कुछ भी बातें सुनाए सुनाते हैं या वो पढ़ते हैं तो उनको रुचि नहीं। ये विशुद्धि लब्धि वाला जीव जब उसको उसी की अपनी पात्रता से ही जब देशना लब्धि की यहाँ तैयारी है तो सामने देशना उसको मिलेगी ही। तो ये जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो तत्व का उपदेश दिया है, दिया गया था वो आचार्यों के द्वारा आज तक हमें उपलब्ध है। इस तत्व को जानकर यानी उसको श्रवण यानी सुनना, ग्रहण यानी समझना, धारण यानी वो ख्याल में याद में रखना, फिर उस पर बार बार विचार करना कि ये तत्व ऐसे ही है, ये अपने परीक्षा पूर्वक उसका निर्णय करना, इसको कहते धारण और निर्धारण। और जब निर्धारण होता है तो तत्व विचार में जुड़ जाता है, अपने उससे की सन्मुखता हो जाती है, उसको आत्मा की महानता भाषित होती है और आत्मा को लक्षण कैसे वगैरह विचार उसके चलते रहते हैं। और उसके स्वरूप यहाँ फलस्वरूप प्रायोग लब्धि में विशेष बातें बनती है। और ऐसा जो जब स्व सम्मुख पुरुषार्थ करता है, अपने आत्मा को ज्ञान का विषय बनाता है तब करण लब्धि में चढ़ जाता है और उसको प्रथमोक्षण सम्यक्ति की प्राप्ति होती है। तो प्रायोग लब्धि में हम देख रहे थे कि प्रायोग लब्धि में आने पर क्या होता है, दो बातें बनती है। एक तो पूर्व में जो बांधे हुए कर्म सत्ता में पड़े हुए उसमें जो कुछ होगा वो, और अभी एक जो नया बंद हो रहा है उसमें भी जो कुछ परिवर्तन होगा या अवस्थान्तर होगा, ऐसे दो बातें हमने देखी थी, तो जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उसमें क्या होता है, तो उनकी स्थिति घट जाती है। कौन से कर्मों की? आयु बिना अन्य सातों ही कर्मों की स्थिति घटकर अंतर थोड़ा थोड़ी सागर प्रमाण रहती है। पूर्व में भले वो बहुत बांधी की 50 थोड़ा थोड़ी सागर हो या अन्य कुछ भी हो, अन्य अन्य कर्मों में अन्य अन्य स्थिति होती है, तो वो सब घटती है। शुभ या अशुभ प्रकृति है, प्रशस्त प्रकृति हो या अप्रशस्त प्रकृति हो, सबकी स्थिति घट जाती है और अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण शेष रहती है। ये कार्य कैसे होता है? तो कांडक घात होता है। तो स्थिति कांडक घात द्वारा अनेक निषेकों का अभाव होकर वो तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण निषेक बाकी रहते हैं और ऊपर के सारे परमाणुओं की स्थिति घट जाती है। इसको कहते हैं स्थिति कांडक घात। अब स्थिति कांडक घात के साथ साथ अनुभाग कांडक घात भी होता है। वो कौन से कर्मों में होता है? हाँ, सत्ता में पड़े मैं कौन से? प्रशस्त के अप्रशस्त? अप्रशस्त में, अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों में अनुभाग कांडक घात होता है। तो तीव्र अनुभाग वाले जो अनेक स्पर्धक है, अनंत स्पर्धक, उनका नाश होकर अनंत में भाग प्रमाण रह जाता है। इतना बड़ा एक कांडक होता है। वो शैल अस्थि वाले वगैरह सब, यानी चार स्थान वाले जो थे, और यहाँ विष हलाहल वाले भी, उनका यानी वो अनुभाग घट जाता है, अनुभाग कांडक घात हो जाता है और वो लता और दारू और नीम और कांजी रूप रह जाता है। ये तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों में ये बातें बनती है। यानी जो चतुस्थान था सत्ता में पड़ा हुआ जो, वो द्विस्थान रूप हो जाता है। अप्रशस्त वाले की बात है। अब जो नया बंद हो रहा है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो अब यहाँ जो नया बंद होगा तो अंत थोड़ा थोड़ी सागर इतना ही होगा। किसी भी कर्म का, ज्ञानावरण हो, दर्शनावरण हो, कोई भी कर्म हो, तो अंत थोड़ा थोड़ी सागर से अधिक बंद यहाँ होगा ही नहीं। और यह बंद भी क्रमशः घटता चला जाता है, हीन होते चला जाता है। तो स्थिति बंद पहले समय में जितना था अंत, यानी उसमें फिर ड्रॉप आता है, कम होता है, पल्ले के संख्या से भाग प्रमाण उसमें घट हो जाती है। फिर उतना समान स्थिति बंद कुछ काल तक होगा, फिर उसमें कटौती होगी, फिर समान होगा, फिर कटौती होगी। इस तरह से जब 700 से 800 सागर इतनी घट हो जाती है, पहले समय में जितना स्थिति बंद होता था उससे अब 700 से 800 सागर से हीनता हो गई, तब जाकर कोई विशिष्ट प्रकृति का बंद भी रुक जाता है। इसको कहते हैं प्रकृति बंधापसरण। स्थिति बंद का क्रमशः घटना, इसको कहते हैं स्थिति बंधापसरण। और अनेक प्रकृतियां का बंद भी यहाँ रुक जाता है, इसको कहते हैं प्रकृति बंधापसरण। तो जब जब यानी हजारों हजारों स्थिति बंधापसरण होने के पश्चात जब 700 से 800 सागर इतनी स्थिति में घट हो जाती, बंधने में बंद जो होता है उसकी बात चल रही है, तब जाके एक प्रकृति बंधापसरण का स्थान आता है। फिर दोबारा 700-800 की घट होगी तो दूसरा स्थान, फिर और 700-800 घट होती है तो तीसरा स्थान। यानी दो प्रकृति बंधापसरण के स्थानों के बीच में स्थिति बंधापसरण जो स्थान है उसके, यानी वो बहुत सारे हजारों हजारों बार हो जाते हैं, यानी हजारों करोड़ों बार हो जाते हैं, और हर एक के लिए एक एक अंतर्मुहूर्त लगता है। प्रायः लब्धि का काल भी अंतर्मुहूर्त, और उसमें एक स्थिति बंधापसरण का काल भी अंतर्मुहूर्त, और ऐसे अंतर्मुहूर्त वाले जो स्थिति बंधापसरण है वो दो प्रकृति बंधापसरण के बीच वाला काल वो भी अंतर्मुहूर्त, और उसके अंदर ये हजारों करोड़ों बार हो जाते हैं। क्योंकि अंतर्मुहूर्त अलग अलग वेरिएशन है ना, उसमें कोई छोटे है कोई बड़े है, तो इस तरह से ये प्रायः लब्धि में बनता रहता है कि सत्ता में पड़े हुए कर्मों का स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात होता है, और प्रशस्त में अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात दोनों में, प्रशस्त और अप्रशस्तों में। इस तरह सत्ता वाली जो स्थिति है वो अंत कोड़ा कोड़ी सागर रह जाते हैं, और अनुभाग है अप्रशस्त में द्वि स्थानगत रह जाता है।
अब जो नया बंद हो रहा है वह भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर होता है और वह भी क्रमशः घटता जाता है, जिसको हम स्थिति बंधापसरण कहते हैं। इसी तरह अनेक बार स्थिति बंधापसरण होने के बाद एक 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 करके प्रकृति बंधापसरण के भी ऐसे स्थान आते हैं, तो ये स्थान ऐसे कितने हैं? 34 स्थान। और ऐसे 34 स्थानों में मिलकर कितनी प्रकृतियों का? 46 प्रकृतियों की जो बंद है वो उसका अपसरण होता है। बंद होना रुकता है, टेम्पररी है। नहीं, अपसरण अलग है और युच्छित्ति अलग है। अपसरण में अभी तो ये मिथ्या तो गुणस्थान है, और युच्छित्ति कब होगी? जब गुणस्थान पलटेगा। ख्याल है ना? विशिष्ट गुणस्थान की युच्छित्ति कहते हैं, तो जब जीव जब तक पहले में है तब तक बंद है, ऊपर कहीं भी बंद नहीं है, तो उतनी प्रकृतियों को कहेंगे उनकी विच्छिद्धि पहले गुणस्थान में होगी। जैसे मिथ्या तो प्रकृति पहले गुणस्थान में ही बनती है, ऊपर किसी भी गुणस्थान में नहीं बनती, तो हम कहेंगे वो मिथ्यात्व की बंद की विच्छिद्धि पहले गुणस्थान में हो गई। ऐसे मिथ्यात्व के साथ अन्य भी 16 प्रकृति टोटल है, जो मात्र पहले गुणस्थान में ही बनती है, दूसरे तीसरे ऊपर कहीं किसी भी गुणस्थान में नहीं बनती, तो उसको कहते हैं बंद की विच्छिद्धि होना उस गुणस्थान में। यानी उस गुणस्थान के अंत समय तक बंद है, बाद में उसका बंद नहीं है। है ना? ये अभी अंतर हम देख रहे थे, उसको अभी दोबारा देखते हैं। यानी जो नया बंद होता है उसमें स्थिति बंद घटता चला जाता है और अनेक प्रकृतियों का बंद रुकता है, वैसे ही प्रदेश बंद भी घटता चला जाता है। और प्रकृति बंद तो देखा, प्रदेश बंद देखा, स्थिति बंद देखा। अनुराग बंद में दो प्रकार होते हैं कि अप्रशस्त में द्विस्थानगत होता है, यानी लता दारू और नीम कांजीर वाला बंद होगा और जो तीव्र वाले नहीं होगा, और प्रशस्त में चतुस्थानगत बंद होगा। कौन से चार स्थान? गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। बहुत बढ़िया। इस तरह से ये हमने प्रायोगलब्धि में क्या क्या बातें होती है वो देखा था। अब ये प्रकृति बंधापसरण और बंद विच्छिद्धि में क्या अंतर है उसको हम देख रहे थे कल। 105 पेज पर आए थे। गुजराती कितना नंबर है? 103। यहाँ हम दोनों में अंतर देख रहे, ऐसा लिखा है ना पैराग्राफ के अंत में, सेकंड पैराग्राफ हिंदी में 105 पेज पर मिल गया। गुजराती में 102 पेज है, गुजराती 102। देखो, प्रकृति बंधापसरण तो प्रायोग्य लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त्व के काल तक होता है। ये बंधापसरण 103। लो या मैं बताऊं, हाँ 103 पेज पर सेकंड पैराग्राफ 103 पेज। प्रकृति बंधापसरण तो प्रायोग्य लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त्व के काल तक होता है, उसमें केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंतर मुहूर्त तक रुक जाता है। यानी उसमें कोई भी घाती कर्म है नहीं, घाती कर्म की एक भी प्रकृति उसमें नहीं है। प्रकृति बंधापसरण की हमने जितनी सारी प्रकृतियां देखी उसमें घाती कर्म की एक भी प्रकृति नहीं थी। है ना? तो उसमें कौन से थे? अघाती कर्मों की कुछ प्रकृतियां थी। जब तक समय को प्राप्त नहीं होता तब तक इसे संवर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व गुणस्थान ही चल रहा है। अभी प्रायोगिक लब्धि है ना, प्रायोगिक लब्धि में जो प्रकृति का विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुक गया है वो अंतर्मुहूर्त तक रुकेगा, और जो प्रायोगिक लब्धि से वो फिर छूट जाएगा, आगे करण लब्धि नहीं मानेगा, समय को प्राप्त नहीं करेगा, तो अंतर्मुहूर्त के बाद फिर उसके परिणाम बदल जाएंगे और फिर जो बंध रुका था वो फिर सभी के सभी प्रकृतियां बन सकती है। यथा योग्य जैसे परिणाम हो गए वैसे जीव को वैसे प्रकृतियां बन सकती है। जीव सम्यक को प्राप्त करके जब ऊपर के गुणस्थान में पहुंचता है तभी पूर्व के गुणस्थानों में होने वाले बंध की विच्छिद्धि हुई कहेंगे।
तो दोनों का अंतर हम देख रहे हैं। बंधापसरण कब होता है उसको देखा हमने, बंध की विच्छित्ति कब कहेंगे कि जीव ऊपर के गुणस्थानों में गया, जैसे चौथे में गया, पहले से चौथे में गया। तो जिन जिन की प्रकृति बंध की विच्छित्ति पहले में होती है, दूसरे में होती है, तीसरे में होती है, सबके टोटल करेंगे और उतने प्रकृतियों का बंध उस चौथे गुणस्थान में नहीं होगा। जैसे पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है, दूसरे गुणस्थान में 25 प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति होती है, तीसरे गुणस्थान में जितना बंध उतना ही चालू रहता है, विच्छित्ति नहीं होती है। तो चौथे में जाने वाले जो जीव है उसको कितने प्रकृतियों का बंध हो गया, 41, 16 प्लस 25, बराबर। इसको कहते हैं बंध की विच्छित्ति होना। अब देखो यहाँ जीव सम्यक को प्राप्त करके, मैं फिर पढ़ रहे हैं तीसरा करेगा, जब ऊपर के गुणस्थान में पहुंचता है तभी पूर्व के गुणस्थानों में होने वाले बंध की विच्छित्ति हुई कहेंगे। बंधापसरण में गुणस्थान नहीं बदला था, बंध की विच्छित्ति में गुणस्थान ऊपर का चला जाता है, ऊपर का होता है। सम्यक को प्राप्त करते ही चौथे गुणस्थान में जाने पर मिथ्यात्वादी 16 और अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, इसे 41 प्रकृतियों का संवर कहेंगे। वहां तो हम संवर कह सकते हैं क्योंकि अभी सम्यक को प्राप्त हो गया, गुणस्थान बदला है ना अभी। फिर और एक क्या अंतर है डिफरेंस में, बंधापसरण तो मात्र अंतर्मूल के लिए ही होता है, परंतु बंध विच्छित्ति तो जब तक जीव ऊपर के गुणस्थानों में है तब तक नीचे के गुणस्थानों संबंधी बंध की विच्छित्ति कायम रहती है। जब तक चौथा गुणस्थान चालू है उसका, तब तक वो 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, तो वो कायम है जब तक उसका गुणस्थान ऊपर का है। परंतु ये बंधापसरण तो अंतर्मूल के लिए हुआ है, क्योंकि प्रायोगलब्धि का काल ही एक अंतर्मूल है। उसके बाद या तो करण लब्धि में जाएगा या तो फिर वापस अन्य परिणामों में चला जाएगा, शुभ या अशुभ या जो कुछ हीनादि कोना है इसका वैसे। अब प्रकृति बंधापसरण तो भव्य अभव्य दोनों में होता है, और बंध की विच्छित्ति किसमें होगी, हाँ भव्य में ही होगी, क्योंकि भव्य ही जो संदर्भ को प्राप्त करेगा। तो अभव्य में कभी बंध की विच्छित्ति होगी ही नहीं, बंधापसरण तो हो सकता है क्योंकि अभव्य जीव भी प्राय के लब्धि तक आ सकता है, वो तो अनंत बार आके जाएगा वापस। भव्य भी यदि आगे का उसका पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्राय के लब्धि तक आ गया, उसका अंतर सम्मुख पुरुषार्थ नहीं हुआ तो करण लब्धि भी नहीं हुई और सम्यक तक भी नहीं होगा, ऐसे भी भव्य है ना। बंध की विच्छित्ति तो भव्य में, वह भी सम्यक तो प्राप्त होने पर होगी। भव्य है इसलिए बंध की विच्छित्ति हुई ऐसा नहीं है, यदि वो समय को प्राप्त करता है तो पूर्व गुणस्थानों में जो बंधता था वो बंध अभी यहाँ नहीं होगा, विशिष्ट बंध तो 41 प्रकृतियों का बंध उसका रुक जाएगा, तो हम कहेंगे उसके बंध की विच्छित्ति हो गई। विच्छित्ति में उसका अभाव हो गया, बंध का अभाव हो गया। यहाँ हम प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं, जीव के परिणाम प्रति समय अधिकाधिक विशुद्ध होते जाते हैं, उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। अभी हमने सत्ता की भी बात की और बंध की भी थी। सत्ता में देखा ना, स्थिति घट गई, अनुभव प्रशस्त अप्रशस्त में एक में घटा एक में बढ़ा, और फिर बंध क्रमशः घटता गया, स्थिति बंधापसरण हुआ, वैसे प्रकृति बंधापसरण भी होता है। अनुभव भी और प्रशस्त में द्विस्थानगत बनता है, प्रशस्त में 4 स्थानगत बनता है। इस तरह से सत्ता में बंध में वैसे ही उदय में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि हमने देखा था कि अप्रशस्त कर्मों का अनुभव हीन होकर उदय में आता है, तो उदय में भी परिवर्तन हुआ ना, मंदता की ओर वो बढ़ रहा है तो उदय में भी परिवर्तन हो गया। इस तरह से सत्ता में पड़े हुए कर्मों में परिवर्तन होते हैं, बंधने वाले कर्मों में भी परिवर्तन हो गए और उदय में आने वाले में भी परिवर्तन हुए। ऐसा नहीं होगा उसका उदय चेंज हुआ इसलिए जीव को भाव ऐसे हुआ, उल्टा लेना। घाती कर्मों में तो ऐसा ही होता है, विशेषता मोहिनी में जैसे जीव के परिणाम है उस प्रकार का उदय हो जाता है, कर्मों पहले कर्म कैसे भी क्यों न बांधे, हमें क्या लगता है कि डिग्री टू डिग्री इसके यहाँ जीव को भाव होते, जितने डिग्री में उदय है उतने डिग्री में भाव, ऐसा उल्टा हमें क्या लगता है उतनी डिग्री में उदय आया इसलिए भाव करने पड़े, ऐसा नहीं है। जीव के अभी तत्व विचार चलते है, जीव का अपना कषाय मंद हुआ तो पूर्व में बांधे हुए तीव्र कषाय भी मंद होकर उदय में आते, ये उल्टा लेना उसको, हम उसका उल्टा लेते कि थर्मामीटर उतना ही दिखाएगा जितना टेम्परेचर बाहर है, रूम टेम्परेचर हमें अभी देखना है तो बैरोमीटर क्या दिखाएगा, जितना टेम्परेचर है वो दिखाएगा, ऐसा नहीं कि वो इतना बढ़ा है इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा है। ये तो लोगों को ऐसे होता कि क्योंकि नियम है ना, जो उदय में है तो उतना तो यहाँ भाव है ही है, तो उदय में आया इसलिए भाव हुआ ऐसा नहीं, जैसा भाव हुआ वैसा वहां उदय में आया, जीव के भावों के अनुसार आघाती कर्मों में कोई चेंज नहीं होगा, उसका जैसा उदय है वैसा होगा। अभी थोड़ा इसमें जो अप्रशस्त कर्मों का अनुभव घटता है वो तो होता है उतनी मात्रा में, परंतु जो राग द्वेष के परिणाम के बारे में बताए तो आघाती कर्मों में इतना वेरिएशन नहीं होगा, परंतु घाती कर्मों में तो ये नियम है ही, जीव तत्व विचार में जुड़ता है तो नेचुरली उसने पूर्व में अधिक तीव्र कषाय बांधे होंगे, अधिक अन्य ज्ञानावरणादि कर्म ऐसे तीव्र अनुभव वाले बांधे होंगे, वो भी मंद होकर उदय में आने लगते हैं। यानी किसी को ऐसा डर लगता है ना, क्या करे हमने पूर्व में पाप किया है और बहुत तीव्र अनुभव वाले कर्म बांधे है तो अभी क्या करना, हमें कुछ चिंता की जरूरत ही नहीं है, तत्व विचार यही एकमात्र करने योग्य चीज है और उसी के द्वारा ये सभी परिवर्तन जो कर्मों में है वो होता है। यानी पूर्व परिणामों के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, है ना, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि उदय हमारा ऐसा है तो क्या करेंगे, डर तो लगता है ना, क्यों सुशीला बहन यहाँ लिखा है तो सत्ता बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। नीचे से दूसरा पैराग्राफ, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाव स्थिति कांडक घात और अनुभाव कांडक घात द्वारा घटता है, नया बंध होता है उसमें भी स्थितिबंध स्थितिबंधापसरण द्वारा और विवक्षित प्रकृतियों का बंध प्रकृतिबंधापसरण द्वारा घटता जाता है। हमने बंध के चार प्रकार देखे थे, प्रकृति बंध प्रदेश बंध स्थिति बंध और अनुभाव बंध, उसमें से स्थिति बंधापसरण तो देखा, प्रकृति बंधापसरण भी देखा, अनुभाव बंध भी अप्रशस्त में घटता है द्विस्थानगत होता है, प्रशस्त में बढ़ता है चतुस्थानगत होता है, और प्रदेश बंध भी यथा योग्य वो घटता है, उसको अनुत्कृष्ट और अजगण्य कहते हैं तो वो उसमें भी यथा योग्य कटौती हो जाती है। अब आगे अगला पैराग्राफ, ये अभी जो मैंने बता दिया आपको अनुभव की भी बात हमने देखी, अब उदय में आने वाले कर्मों में क्या होता है वो नीचे से दूसरा बड़ा पैराग्राफ। तो जिस कर्म का उदय है उस कर्म का जीव भोगता होता है, यानी भोगता होता है ना क्या, उसके उदय में उसको ऐसा फल मिलता है। उदय तो एक समय में एक ही निषेध का होता है, इसलिए वर्तमान एक समय की स्थिति वाला एक निषेध का उदय होता है, परंतु कितना परमाणु उदय में आए कितने निषेध उदय में आए इसलिए जीव को कुछ भोगना पड़ता है ऐसी बात नहीं है। जीव का लेना देना किससे, अनुभव उदय से, और वो तो हमने देखा अनुभव उदय अप्रशस्त में मंद होकर उदय में आता है और प्रशस्त में बढ़कर उदय में आता है, तो पाप का फल जो पूर्व में बांधे हुए पाप का फल मंद होकर उदय में आता है और पूर्व में पाप बांधे हुए पुण्य का बढ़कर उसको फल मिलता है, इस तरह से उदय में भी उसका परिवर्तन होता है। और प्रदेश की भी बात की थी हमने, इस प्रकार ये तो प्रायोगिक लब्धि की बात हमने देखी, यहाँ तक तो प्रायोगिक लब्धि की चर्चा हमारी हो गई, ये बंदे की विच्छित्ति के और जो डिटेल्स है वो अंत में फिर देखेंगे, अंतिम प्रकरण में है वो फिर। अब यहाँ करण लब्धि से वो प्रकरण उसका प्रारंभ करते, क्योंकि हर हमेशा वही छूट जाता है ना देखो 107 पेज पर हिंदी में
एक करण लब्धि वाला जो प्रकरण है उसमें दूसरा पैराग्राफ। ये तो पहले पैराग्राफ में हमने यही देखा कि भव्य अभव्य दोनों को ही प्रायोग्य लब्धि तक के परिणाम हो सकते हैं। प्रायोग्य लब्धि में जो जो हमने बातें देखी, सत्ता में, उदय में और बंधने में जो परिवर्तन होता है वो अभव्यों को भी हो सकता है, भव्यों को भी हो सकता है। यहाँ तक तो भव्य अभव्य दोनों ही जीव आ सकते हैं। अब दूसरे पैराग्राफ, भव्य जीवों में से भी कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे, उन जीवों में पात्रता होने पर भी उपादान गत योग्यता अनुसार, यानी पर्याय की योग्यता ना, कौन से समय कौन सी पर्याय होगी, ऐसी योग्यता उस द्रव्य में ही अनादि से विद्यमान है। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय की विशिष्ट पर्याय निश्चित है, वो द्रव्य के अपने स्वयं के कारण होती है। केवली ने जाना इसलिए उसको वैसा परिवर्तन करना पड़े ऐसा नहीं है, है ना। तो उपादान योग्यता अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, यानी जब वो विशिष्ट पर्याय होती है तो उस जाति का पुरुषार्थ उस द्रव्य में होता है। भवितव्यता अनुसार, भवितव्य ने जो पर्याय होने वाली है वही होगी, और काल लब्धि अनुसार जिस समय होनी है वही उसी समय होगी। जो जीव अंतर्मूर्त में समय को प्राप्त करने वाले हो वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि करण लब्धि पूर्वक प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होती है। अब हम उल्टा कथन करेंगे, समझो 10 बजे सम्यक होने वाला है तो उसके एक अंतर्मूर्त पहले ये करण लब्धि हो, वो अंतर्मूर्त बहुत छोटा है, कुछ सेकंडों में गिनना उसको, अभी पता नहीं कितना है, सेकंड का भी छोटा भाग है, क्योंकि ये अंतर्मूर्त कहते तो है परंतु वो बहुत छोटा अल्प होता है। वहां निमित्त रूप से कर्म का उपशम, कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से स्वयं वो होगा, यानी कर्म में ये जो अभी हम परिवर्तन देख रहे हैं वो उनकी अपनी योग्यता से स्वयं हो रहे हैं, स्वयं वो हो रहे हैं। जीव का पुरुषार्थ उसमें कुछ है ही नहीं, वो दो भिन्न स्वतंत्र द्रव्य है, उनकी अपनी अपनी योग्यता से अपने अपने पर्याय बदलती है, परंतु जीव के कौन से परिणाम के साथ कर्म की कैसी अवस्था होती है इसको यहाँ ज्ञान, इसका ज्ञान कराया जाता है। वो हुई इसलिए जीव में परिवर्तन हुआ ऐसी बात नहीं, जीव ने ऐसा किया इसलिए वहां परिवर्तन हुआ ऐसा भी बात नहीं, दोनों ही स्वतंत्र है। शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से कथन करते हैं तब कहा जाता है कि जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को सम्यक तो प्रकट होगा। 5 समुदायों की बात जब आती है तो उसमें ये स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार और निमित्त, ऐसे जो 5 समुदाय है तो पांचों ही होते हैं, प्रत्येक कार्य में पांचों ही होते हैं। अब जब कथन करेंगे तो किसी एक की मुख्यता से कर सकते हैं कि काल लब्धि आने पर सम्यक तो होगा, परंतु क्या वो बिना पुरुषार्थ का हुआ, पुरुषार्थ भी है वहां, निमित्त भी है, वो भवितव्य भी है, सभी समुदाय है, परंतु हम किसी एक की मुख्यता से बात करते हैं, अन्य को गौण करते हैं, अन्य की बात नहीं की तो वो है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कहीं कहीं इतना ही लिखा जाता है कि काल लब्धि आने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो जीवों को ऐसा लगता है कि 10 बजे होने वाला है तो अभी हम कल होने वाला है तो आज क्यों प्रयत्न करें, ऐसी बात है ना, या 2 साल के बाद होने वाला है तो अभी तो आराम करें, ऐसी बात नहीं। जब होता है तो पांचों ही उसमें समवाय मिल जाते हैं, तो पुरुषार्थ से ही होगा। तो उपदेश काल लब्धि का करेंगे कि भवितव्य का करेंगे, क्योंकि उपदेश तो पुरुषार्थ की उपदेश मुख्यता से उपदेश दिया जाता है, जीवों को समझाते कि पुरुषार्थ करो, वो भी होता तो सहज ही है परंतु वहाँ उपदेश की मुख्यता है ना, उपदेश की भाषा हमेशा करो करो की हो, जिसे चरणानुयोग की जो उपदेश पद्धति है, यानी पद्धति है कथन पद्धति, उसमें उपदेश की भाषा में बोला जाता है कि ऐसा करो। द्रव्यानुयोग कहेगा कि ऐसा ये होता है, सहज होता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराएगा, करने से नहीं होता ऐसा कहेंगे, है ना। परंतु चरणानुयोग कहेगा करो, करणानुयोग तो बताएगा जब जब जीव ऐसा करता है तब तब कर्मों में ऐसी अवस्था होती है, तो कर्मों का सारा सूक्ष्म वर्णन करेगा, परंतु वो वर्णन देखकर हमें ऐसा उपशम करना है कि क्षय करना, ऐसी कोई बातें है ही नहीं। तो एक समवाय की अपेक्षा से कथन किया हो तो भी वहाँ पांचों ही समवाय का सुमेल होता है। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके पांचों ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उपाय किसका किया? मोक्ष का। और क्या प्रारंभ हुआ? मोक्ष मार्ग। इसे क्या होता है? देखो आगे पढ़ो। देखो यहाँ सम्यक्त का पुरुषार्थ न कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ कहा है। सम्यक्त के लिए कोई अन्य पुरुषार्थ हो, केवल ज्ञान के लिए कुछ अन्य पुरुषार्थ हो, ऐसी बात है ही नहीं। एक ही उपाय है। देखो तत्व निर्णय करके, स्व और पर का भेद विज्ञान करके, अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव इसलिए केवली भगवान ने हमारा समय से जब होने वाला है जाना है तभी होगा कि पुरुषार्थ करने का उद्देश्य क्यों देते हो, अथवा केवली भगवान ने हमारे भविष्य की पर्याय जैसे होने वाली है वैसी जानी है, इसलिए वे इसी प्रकार की होगी तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा, हमको पराधीन हो गए। आदि प्रश्न तथा मान्यताएं भूल भरी है, यह बात तुम्हारे सामने आ गई है, क्योंकि सर्वज्ञ का स्वरूप ही नहीं जाना और न ही अपना स्वरूप जाना। सर्वज्ञ ने काहे से जाना? देखो सभी प्रयोजनों को सर्वज्ञ ने बता दिया कि अपना अपना जो भविष्य का प्लान है पर्यावरण का उनको सौंप दो, प्रमेय को उनको बता दिया। तो सभी लोगों ने प्रमेय को गुने ना, तो सभी द्रव्यों ने अपने प्रमेय को गुण के कारण अपनी अनादि अनंत पर्याय केवल ज्ञान को सौंप दी बनाए। तो पराधीनता हुई उसमें नहीं ना, ऐसे उन्हें आप सबको बता दिया कि अभी अब फॉर्म भर दो, आप कहाँ जाने वाले हो वो हमको बता दो, या हम कंप्यूटर में फिल करते हैं तो हम ही इन्फॉर्मेशन फिल करते, अब फिर बटन दबा दिया तो वही इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, तो क्या हम पराधीन हो गए? वैसे प्रमेयत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय केवल ज्ञान में जानी जाती है, और केवल ज्ञान उससे जानता है, तो वैसे जैसे केवल ज्ञानी नहीं जाना है वैसे हमारी हर एक द्रव्य की पर्याय होगी, तो यहाँ पराधीनता कहाँ है? हमने स्वतंत्रता से उसके ज्ञान में जनाई है, और अभी एक स्वतंत्रता कह रहे हैं कि जैसा केवल ज्ञान नहीं जाना है वैसा हो रहा है। उन्होंने जाना इसलिए नहीं हो रहा, जैसा होने वाला है वैसा उन्होंने जाना है, और जैसा जाने जाना है वैसा होने वाला ही है, दोनों ही स्वतंत्र है। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतंत्रता से अपनी एक एक पर्याय का करता है, हम बिल्कुल पराधीन हैं। ये तो ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान की महानता है, वो अपनी तथा संपूर्ण अन्य द्रव्यों की सभी गुण पर्यायों को एक साथ मिलकर एक समय में जानता है, ये ज्ञान की महानता। तो ऐसा ज्ञान हमारे पास है कि नहीं है? है ना, ज्ञान है ना, हम ज्ञान के धारी है, तो इसमें इतनी शक्ति है अभी वर्तमान में है, और उस शक्ति का स्वीकार करने पर वो शक्ति पर्याय में जगत को नहीं आती, हम उस शक्ति का स्वीकार ही नहीं करते, वो हम स्वयं ही है, तो यानी बाहर नहीं ढूंढना है हमको। तो यही हाँ, तो हमारा पुरुषार्थ क्या हम करा दें होंगे? आदि प्रश्न का मान्यता है भूल रही है, ये बात तुम्हारे ख्याल में आ गई होगी। तुमने इस बात का आश्चर्य व्यक्त किया था कि बौद्धिक के समान अबौद्ध जीवों को भी प्राय की लब्धि हो सकती है, और उनके कर्मों में भी किसी कांडग्रास अनुभाव कांडग्रास स्थितिबंधापकरण प्रकृति बंधापकरण आदि बातें होती है। आश्चर्य लगता ना, अबौद्धों को भी इतनी सारी बातें होती है, भाव तो बौद्ध अबौद्ध दोनों को होते हैं, उनके निमित्त प्रशस्त कर्मों का बंध होता है, परंतु भव्य जीव भी यदि प्राय के लब्धि तक आकर स्वभाव संमुखता का तत्व निर्णय का एवं तदनुरूप परिणमन का पुरुषार्थ नहीं करेंगे,
अर्थात यदि उन्हें कर्म लब्धि प्राप्त नहीं होगी तो उन्हें भी सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो भव्य है इसलिए हो जाती है, ऐसा नहीं, वो तो होगी तो पुरुषार्थ से ही होगी। चलिए पांचों समवाय लगा लेंगे। जिस कर्म लब्धि का नाम तुमने अनेक बार सुना है और जिसके होने पर नियम से सम्यक्त होता ही होता है और जिसके नहीं होने पर सम्यक्त हो ही नहीं सकता, उसका स्वरूप जानने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो, यह बात मैं जानती हूँ। अब उसकी चर्चा करते हैं। अब यह हम करण लब्धि का अपना प्रकरण शुरू हो जाता है। तो करण लब्धि लब्धि का अर्थ तो हम अभी जानते हैं, प्राप्ति पर विशिष्ट ही बातें प्रकट होना। तो करण का अर्थ क्या है मालूम है? करण परिणाम को कहते एक बात, और करण साधन को कहते, वो करण विभक्ति है ना, किसमें षटकार में है करण कारण, और करण कौन से है अपूर्व कर्म, ये वो करण वाला ही है ना, ये करण लग्ने वाला ही है, ऐसा ही अपूर्व कर्म उसके ही नाम है। कार्य को नहीं कहते, गणित के सूत्रों को करण कहते, और एक शब्द आता है अंतकरण नाम सुना है, वो क्या है करण इंद्रियों को कहते, अंतकरण ये अंदर वाला है इंद्रिय, मन जिसको कहते मन को अंतकरण अधिकरण, मन को अंतकरण कहते हैं यानी इंद्रियों को करण कहते। हमने चार अर्थ देखे, परिणाम को कहते हैं, गणित के सूत्रों को कहते हैं, ये तत्कारक वाला जो साधन जो है करण कारक उसको भी करण नाम है, और इंद्रियों को भी करण कहते हैं। ये करण शब्द अलग अलग अर्थों में आता है, और यहाँ जो हम देखने जा रहे हैं तो इंद्रियों के जो परिणाम है विशेष देते हैं, करण परिणाम को कहते हैं। पूर्वोक्त चार लब्धि पूर्वक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय विधिंगत होती जाती है। जीव में तो विशुद्धि बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ना, अभी करण लब्धि में आए नहीं थी, है तो मिथ्या थी, मिथ्या तो ये भी अभी सम्यक्त होने जा रहा है। यहाँ जितनी विशुद्धि तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से बढ़ना विशुद्धि का सम्यक्त होने के बाद भी नहीं होता, तेजी से बढ़ने की बात है, फिर उसकी विशुद्धि नहीं होती ऐसी बात है। ये जो विशुद्धि एकदम जो स्टीप राइज जिसको हम कहेंगे एकदम तेजी से बढ़ रही है, अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना, ये जो विख्यात में से सम्मत हो इतना अपूर्व पुरुषार्थ कि अभी विख्यात गुणस्था जो अनादि से चल रहा था, अभी वो सम्मत प्राप्त करने जा रहा है, तो इसमें जो उसकी विशुद्धि तेजी से बढ़ रही है, तत्व ज्ञान संबंधी जो निर्मलता तेजी से बढ़ रही है उसकी, ये तो बढ़ना जिसे कहते तेजी से बढ़ना, यानी ये जो परम परम परिणाम में विख्यात अवस्था में हो रहा है सम्यक के जब पहले सम्यक कमी चिंता इसके और करण लब्धि मानी है। अभी इस अवस्था में जितना उसका तेजी से बढ़ना होगा उसका बाद में नहीं होगा, सम्यक होने के बाद ये तो मंद गति से चलेगा, तो फिर जब जब करम परिणाम मान लेगा वो जब कभी होता है क्या होता है उसकी चर्चा अलग है, तब तक की वो विशुद्धि तेजी से करनी है। तो इसके तो अलग अलग जो उसकी चर्चा हम बस यहाँ नहीं करेंगे, अब यहाँ तो हम करण लब्धि के परिणामों की चर्चा करेंगे। तो चारों गति के और त्रिकाल वर्ती समस्त जी, देखो ये करण लब्धि है, ये जो करण लब्धि का भी वर्णन हम करेंगे तो इसमें जीवों के परिणामों का वर्णन, तो जिन जीवों में पूर्व में अनादिकाल से आज तक के जीवों में जो करण लब्धि मानती थी, अभी वर्तमान में जो करण लब्धि मान चुके हैं या मान रहे हैं, और जो अनंत काल आने वाला है उस अनंत काल में जो जो जीव करण लब्धि मान लेंगे, उन सभी जीवों के जो परिणाम है वो केवल यानी एक समय में निर्गत जानते हैं, उनको ये पता है कि ये परिणाम में कितनी रोटेशन है। जीव तो है अनंत, परंतु उनमें अलग अलग परिणाम में कितनी रोटेशन तो असंख्यात लोक प्रमाण रोटेशन है। करण लब्धि मानने वाले जीव उनके परिणाम अलग अलग जो है वो असंख्यात लोक प्रमाण, और जीव है अनंत, तेवरियानी उनको एक साथ जानते हैं तो वो ये भी जानते हैं कि किसी किसी जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं। जैसे 1000 स्टूडेंट बैठे परीक्षा में और मार्क से 1 से 100 तक, तो हो सकता है 50 लोगों को विशिष्ट नंबर ऑफ मार्क्स मिले, है ना। 100 में से 100 मार्क मिलाने वाले 10 स्टूडेंट हो, 99 मिलाने वाले जिसको प्राप्त होते वो और कुछ 12-15 हो, और जिसको 100 में से 50 मार्क मिले हो ऐसे कोई 50 स्टूडेंट हो सकता है ना। वैसे हम क्या कहेंगे, उनके मार्क्स में समानता है या किसी किसी में असमानता है, किसी को 50 है किसी को 100 है किसी को 99 है, ये जो वेरिएशन है जी, वहाँ स्टूडेंट्स में 1000 देखे थे और मार्क्स 1 से 100 तक। वैसे यहाँ जीव है अनंत और परिणाम है असंख्यात लोग होना है। तो उनमें किन्हीं किन्हीं जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और किसी के असमान भी हो सकते हैं, किसी के कम हो गए किसी के अधिक हो गए। तो जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक वेरिएशन बहुत सारी होगी। 1 से 100 तक मार्क किसी ने किसी को मिला है ना, मान लो किसी को 0 मिलेगा तो 0 से 100 तक तो मिलेंगे। तो वैसे यहाँ जो 3 काल के जीव है उनके परिणामों की तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर, उनमें 3 प्रकार पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं उसके अभी हम बात करेंगे। तो केवली भगवान तो सभी द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, अनंत जीवों के अनादि अनंत काल के प्रति समय के परिणामों को वे एक साथ जानते हैं, तभी तो बता सकते हैं ना। जीवों को एक समय नहीं जानते, पूर्व में जिन जीवों ने करण लग्न के परिणाम किए थे, वर्तमान में जो कर रहे हैं और भविष्य में जो जीव करेंगे, उन सभी जीवों के परिणामों को केवल भगवान निरूपित जाने। प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती, ये बात है। ये करण परिणाम जो है करण लग्न में एक एक समय में एक एक जीव की अपेक्षा देखेंगे कि पूर्व परिणाम से उसकी विशुद्ध अनंत गुना बढ़ी, फिर अनंत गुना बढ़ी, अनंत गुना बढ़ी है। तो हरेक के पहले तो उनने वेरिएशन कितने देखे, असंख्यात लोग, और अपने अपने परिणाम अनंत गुना बढ़ेगी। जैसे अभी मान लेते हैं हम 1 से लेकर 5 तक कुछ मार्क से इतना हम देखते हैं और हरेक के मार्क 5-5 गुना बढ़ेगी, तो जो 1 वाला है वो 5 होगा, और 2 वाला है वो 5 गुना यानी 10 होगा, 3 वाला है वो 15 होगा, 4 वाला है वो 20 होगा, 5 वाला है वो 25 होगा। तो जो 5 गुना है ना, 1 है वो 5 गुना हुआ और किसी को पहले ही 5 मार्क थे, हाँ, तो दूसरे समय में 5 किसी को था, किसी को पहले ही समय में 5 था, बराबर। इस तरह से जो दूसरे और पहले समय में समानता हो सकती है, वैसे प्रत्येक की विशुद्धि अनंत अनंत गुना बढ़ी। फिर भी ऐसा हो सकता है कि किसी जीव का दूसरे तीसरे या चौथे समय का परिणाम और किसी जीव का पहले ही समय का परिणाम समान हो सकता है, हो सकता है। ये ऊपर के समय में और नीचे के समय में जब जब समानता पाई जाती है जितने काल में हो, तो उसको कहते हैं अध प्रवृत्तकरण परिणाम। ये जो नाम दिए गए हैं, 3 नाम है, अधप्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। मैंने करण लब्धि का जो पूरा एक अंतर्मूत है उसमें ये 3 भाग करते हैं। पहले का नाम क्या है, अधप्रवृत्तकरण, बोलना। दूसरा है अपूर्वकरण और तीसरा है अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण का काल सबसे छोटा है, उससे बड़ा है अपूर्वकरण का काल और उससे भी बड़ा है अधप्रवृत्तकरण का काल। तो जो अधप्रवृत्तकरण, जो पहला अधप्रवृत्तकरण है, पहले में पहले अधप्रवृत्तकरण होता है, उसके पश्चात अपूर्वकरण होता है और उसके पश्चात अनिवृत्तिकरण होता है। इसमें तो जीव के परिणामों की विशुद्धि तो बढ़ती बढ़ती चली जाती है। परंतु अन्य के जीवों की कंपेरिजन अगर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनमें क्या बात प्रति पाई जाती है, उसके कारण इसका नाम ऐसा अलग अलग पड़ा। तो अगर प्रवृत्तकरण में क्या होता है, किसी जीव के पहले समय के परिणाम, किसी जीव के दूसरे समय के परिणाम, अन्य किसी जीव के तीसरे समय के परिणाम और अन्य किसी जीव के चौथे समय के परिणाम, इनमें समानता हो सकती है। तो ये ऊपर और नीचे समय में समानता का होना, इसको कहते हैं अधः प्रवृत्तकरण। और ये जो समानता पाई जाती है, इसी का दूसरा नाम है अनुपुष्टि रचना। उसको हम देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे। टाइम अधिक प्रवृत्तकरण का अभी चल रहा है ना, टाइम फिक्स है, एक अंतर्मूर्त काल और अपनी अपनी विशुद्धि हर एक की बढ़ रही है ना, वेरिएशन है। असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग प्रकार के परिणाम है। अगर हम काल्पनिक संख्या लेंगे, उसकी कंपैरिजन करेंगे और उसमें सब बातें बताएंगे, चार्ट द्वारा इसमें भी चार्ट सब दिए, वो सब चर्चा हम करेंगे। पहले पढ़ते हैं स्थूल रूप से हर एक करण का, करण जो लगती है ना, तीन करण, उसकी स्थूल चर्चा करेंगे और हर एक को हम बिल्कुल विस्तार से फिर बाद में उसकी जो दोबारा चर्चा करें। तो यहां पढ़ते हैं अभी कि ये तीसरे लाइन पर आए थे, प्रत्येक जीव के परिणामों की विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती है, परंतु भिन्न भिन्न जीवों के परिणामों में समानता या असमानता होने की अपेक्षा से इन परिणामों के तीन भेद किए जाते हैं। इन परिणामों के या तीन करण के नाम इस प्रकार है, जो अभी हमने पढ़े थे, अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इस प्रकार चार लब्धि पूर्वक, यानी जिसको पहले चार लब्धि होती है, ऐसा जीव जीव का उपयोग जब निज शुद्धात्मा की ओर लगता है, अभी उपयोग स्व शुद्धात्मा की तरफ, जिसको हम दृष्टि का विषय कहते हैं, उपयोग अभी उसमें लगा है, तब क्रम से अधः प्रवृत्तकरण अर्थात अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं, इसे करण लब्धि कहते हैं। यहां शुद्धोपयोग की बात यहां नहीं आएगी, करना नहीं होगा। क्यों नहीं आती है, इसका क्या कारण है, इसकी चर्चा आगे की है और इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से उद्धरण दिए हुए, इसकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग करण परिणाम क्या है और उसका स्वरूप क्या है, इसको देखेंगे। करण लब्धि का काल एक अंतर्मूर्त होता है, तीनों करणों का काल भी अपना अपना एक एक अंतर्मूर्त होता है, उनमें एक अंतर्मूर्त में और अन्य अंतर्मूर्त भी बहुत होते हैं। इसकी भी चर्चा करेंगे, हाँ, क्योंकि वो प्रश्न भी उठाए हैं, उसका वहां समाधान भी किया है। क्रम से आएगा जब हम पढ़ेंगे, हर एक का काल एक एक अंतर्मूर्त है, तथापि अनिवृत्तिकरण का काल सबसे अल्प है, अपूर्वकरण का काल उससे संख्यात गुना बड़ा है। संख्या गुणवान जो चार गुना है, के दस गुना है, के हजार गुना है, जो कुछ यथा योग्य उसके कहते संख्यात गुना। हम मानेंगे कि दो गुना है, दो भी संख्या कहते हैं, मिनिमम संख्या है दो, तो संख्यात गुना है। और अधःकरण का काल उससे भी संख्यात गुना बड़ा है। सर्वप्रथम तीनों करणों का स्वरूप एवं विशेषता देखकर पश्चात उस पर सविस्तार चर्चा करेंगे। पहले तो बिल्कुल स्थूल रूप से इसकी यहाँ परिभाषा दे देंगे, फिर उसमें जो जो शब्द आए हैं उस एक एक शब्द का विस्तार से हम वर्णन देखेंगे। अधः प्रवृत्तकरण मानकर जिसे अधिक समय हुए है, यानी अधः प्रवृत्तकरण शुरू हुआ है, अब मान लो किसी के चार समय हुए, अधिक समय हुए, अधिक आगे गया हो, ऐसे ऊपर के समयवर्ती किसी जीव के परिणाम, यानी अभी जिसका चौथा समय चालू है, ऐसा किसी जीव के परिणाम, और अधः प्रवृत्तकरण मानकर थोड़े ही समय हुए है, ऐसे निचले समयवर्ती कुछ जीवों के परिणाम, एक ही जीव की बात नहीं है, अन्य अन्य जीवों की बात, उनसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इनमें संख्या और विशुद्धता की समानता हो सकती है, इसे अनुकृष्टि रचना कहते हैं। अब ये संख्या क्या है, विशुद्धि क्या है, वो बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम देखेंगे इसको आगे चलकर। विशुद्धि की समानता होती है, इसको तो हमने देखा था, जैसे मार्क्स में समानता होती है इसको देखा था। संख्या की समानता की बात हम बात करें, बाद में करें। तो इनमें विशुद्धि स्वयं हो सकती है, किसी जीव को जितनी विशुद्धि चौथे समय में है, उतनी विशुद्धि अन्य किसी जीव को तीसरे समय में है, उतनी विशुद्धि अन्य किसी जीव को दूसरे समय में है, और उतनी विशुद्धि और अन्य किसी जीव को पहले समय में। तो ये चार समयों तक समानता हो सकती है। यहाँ हमने चार समय लिए समझने के लिए, हाँ विशुद्धि की समानता हो सकती है, किसी जीव को उतनी विशुद्धि प्राप्त करने के लिए चार समय लगे, किसी जीव को तीन समय लगे, किसी जीव को दो समय लगे, और किसी के पहले समय में उतनी विशुद्धि है, क्योंकि विशुद्धि में वेरिएशन थी ना, जब स्टार्टिंग पॉइंट में ही वेरिएशन थे, उनके जब उन्होंने शुरू किया तभी किसी के थोड़ी कम थी, जघन्य थी, और किसी को उत्कृष्ट है, इतनी रेंज तक थे। तो दूसरे समय में अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ गई, तो अपनी अपनी बढ़ गई, तो जो जघन्य था उसकी बढ़कर जो पहले समय वाली थी उतनी रह सकती है, उसकी अभी हम चर्चा चार्ट द्वारा करेंगे। तो ये जो ऊपर और नीचे जो समानता पाई जाती है उसी का नाम है अनुपुष्टि रचना। इसमें और कुछ नहीं, अनुपुष्टि यानी और दूसरा कुछ उसमें जो मीनिंग नहीं है। ये जो ऊपर नीचे जो समानता पाई जाती है उसको कहते अनुपुष्टि रचना। आप नहीं समझे, क्रिकेट मैच तो देखते हैं, तो जब जब वो मैच चलती है तो वो कमेंटेटर जो है, कमेंटेटर है ना, तो पहले वाला रिकॉर्ड के साथ तुलना करता है। तो अभी चौथे ओवर में इतने उसका रन है, तो वो बताता है 90 नमक 87 में या ऐसे जो कुछ पूर्व में खेली गई मैच, उस समय उस जो कोई विशिष्ट जो बैच थी वो देश ने इतना इतना स्कोर किया था। तो अभी वर्तमान में जो चल रही है उसके साथ पूर्व के सभी कंपैरिजन करता है कि किसी ने इतने स्कोर, इतना जो स्कोर है, किसी ने 3 ओवर में किया था, किसी ने 2 ओवर में किया था, किसी ने 1 ओवर में किया था, ये कंपेरेटिव। तो पहले के साथ मिलान करता है ना, किसने कहां कब किया था, ये भविष्य के साथ भी मिलान करता है क्या, वो तो केवल ज्ञानी थोड़ा ये, तो केवल ज्ञानी तो अनादि अनंत के सब जानते हैं इसका। उनको ये तो कॉमेंट्री तो पूर्व में खेली गई है, जो कुछ उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है उसके साथ तुलना करते हैं। वैसे यहाँ जो ये तुलना जो है अन्य अन्य जीवों में चल रही है, और उनकी तुलना में किसी जीव के पहले दूसरे, किसी के तीसरे समय, किसी के 14 समय, किसी का 5वां समय, उसमें जितनी समानता पाई जाती है उसको कहते हैं अधर प्रवृत्तकरण परिणाम। एक जीव की अपेक्षा अगर बात करेंगे तो एक जीव के परिणाम प्रत्येक समय में अनंत गुणे विशुद्धि होती है, ये एक जीव की अपेक्षा। अन्य अन्य जीवों की तुलना करेंगे तो उनमें परिणामों में कहीं समानता होगी, कहीं असमानता होगी, किसी के पहले समय में विशुद्धि परिणाम है उतने किसी के दूसरे समय में, किसी के तीसरे समय में, ऐसी बात। ऐसी जब यहाँ अवस्था है वहां उसका नाम है अधर प्रवृत्तकरण। अब ये वो बात आ जाएगी, विशुद्धि बढ़ती है इतनी बात करने आ गई ना। अब यहाँ क्या होती है, ये विशुद्धि तो बड़ी समझ गए, जीव में विशुद्धता बढ़ती चली जाती है तो उसके कारण क्या क्या बातें होती है। जो नियम से होती ही है उसको कहते आवश्यक। तो ऐसा कहेंगे कि अधर प्रवृत्तकरण में चार आवश्यक होते हैं। इसका अर्थ है जब जीव अधर प्रवृत्तकरण मानता है तो उसमें ये चार बातें बनती ही है, उसको कहते आवश्यक है। तो क्या होता है, तो विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है। पहले समय में जितनी विशुद्धि है उसके अनंत गुणा दूसरे समय में, जितनी दूसरी समय में है उससे अनंत गुणा तीसरे समय में, ऐसे प्रति समय यानी हरेक समय में उसको अनंत से गुना करती जाती, इतनी विशुद्धि बढ़ती जाती। विशुद्धि यहाँ अविभाव प्रतिच्छेदों में नाचते हैं, तो जितने अनंत अविभाव प्रतिच्छेद पहले समय में है उसको और अनंत से गुना करो, और अनंत से गुना करो, और अनंत से गुना करो, इस तरह से विशुद्धि बढ़ती चली जाती। अब स्थिति बंधापसरण होता है, ये प्रायोगिक लब्धि में भी होता ही था। यहाँ का स्थितिबंध और घटता चला जाता है, यानी स्थितिबंध का घटना यहाँ भी चल रहा है, बंध घटता ही चला जाता है। और क्या होता है, तो प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ, पहले समय में जितने विशुद्ध प्रकृतियां प्रशस्त प्रकृतियां बांधी थी जिस अनुभाव में, उससे दूसरे समय में जो प्रकृतियां बंधेगी अभी प्रशस्त प्रकृतियां, उनका उनका जो अनुभव है वो अनंत गुना बढ़ेगा। नया बंध की बात है, तो प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुष्थानगत अनुभाव बंध होता है। गुड़ खांड शर्करा रंगित चारों प्रकार के ये पर्वत बंधे हुए, परंतु पहले समय में जितना अनुभव था दूसरे समय में उससे अनंत गुना बढ़ता हुआ अनुभव बंधे, और अप्रशस्त प्रकृतियों में उल्टा होगा कि प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ, और वो भी कैसा, द्विस्थानगत यानी लता दारू रूप और नीम कांजी रूप अनुभव का बंध होगा। चार बातें कौन सी होगी, पढ़कर भी बता सकते थे और नहीं पढ़कर ऐसे बताना है तो मैं सुनूंगी ऐसी, कौन बताना चाहता है, एक साथ नहीं, चार बातें यहाँ बनती। हाँ बोलो। हाँ, विशुद्धि हर समय अनंत गुना बढ़ती है एक बात, स्थिति बंधापसरण होता रहता है दूसरी बात, बराबर है, प्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुष्थानगत बंध होता है अनुभाव, अप्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ ऐसा द्विस्थानगत बंध होता है। ये बात ख्याल में, ऐसी चार बातें ये अलग प्रवृत्तकरण के परिणामों के निमित्त से देते हैं। परिणामों में विशुद्धि होती है, तो यहाँ कषाय की मंदता भी लेना और तत्वज्ञान की निर्मलता लेना, क्योंकि अभी तत्व विचार में जुड़ रहा है, तत्व निर्णय वो है और उपयोग अभी शुद्धात्मा की तरफ है उसका, तो उसमें श्रद्धा संबंधी निर्मलता, तत्व संबंधी निर्मलता जानना उसको, और फिर कषायों की तो मंदता है ही है, कषायों के जो उदय स्थान है वो भी मंदता की ओर बढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं विशुद्धि। अभी सत्ता में वो कांडक कांड वगैरह कुछ अभी नहीं हुआ, अभी इतनी बातें बनी, क्योंकि स्थिति में तो हमने देखा था कि प्रायोगिक लब्धि में आते ही वो स्थिति एकदम घट गई है, एक एक कांडक घात जाए। अब आगे जो अन्य कांडक घात होंगे तो अपूर्वकरण से वो होंगे, अभी तो अधप प्रवृत्तकरण में तो इतनी ही बातें होती, और जो कुछ गुण श्रेणी की रचना होना है या जो कुछ अन्य बातें हैं वो आगे अपूर्वकरण से शुरू हो जाएगी। अधप प्रवृत्तकरण में विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती जाती है, उसके कारण ये चार बातें बनती है, यानी विशुद्धि अनंत गुना बढ़ना, सिद्धि बंधापकरण होना, प्रशस्त प्रकृतियों में अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुष्थानगत बंध होना, और अप्रशस्त प्रकृतियों में प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानगत बंध। ख्याल है, ये चार बातें बनती है, ये चार बातें आगे भी चलती रही अपूर्वकरण में, इन एडिशन इसके अलावा और भी अधिक कुछ बातें बनी है ना।
चार समय में जो मानता है इस पर
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में ही उनकी विषय अलग अलग परिणाम थे। देखो, अनंत अलग अलग जीव करण लग्न में आ गए, उनके परिणामों में कितनी वेरिएशन है। किसी के कन्न कषाय मंद है, किसी के तीव्र है, किसी के लेशा है। हमने देखे थे नरक वाले के तो कृष्ण लेशा है, कृष्णादि तीन लेशा हो सके जो जो अपने अपने नरक है। स्वर्गों में तो शुभ लेशा है, मनुष्य तिरंजों में भी लेशा तो हम एक नाम लिया लेशा का, परंतु एक एक लेशा में भी असंख्यात लोक प्रमाण वेरिएशन उसके परिणाम होते हैं। तो हरेक जिनके अपने अपने परिणामों की अलग अलग बात है, फिर भी अभी करण लग्न में आता है तो विशिष्ट उसकी विशुद्धि वेरिएशन है उसमें। अब जाते जाते उसके अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ते 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 ऐसा एक पॉइंट आएगा कि सबकी विशुद्धि समान, विशुद्धि की बात लेशा की बात नहीं, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। निज शुद्धात्मा का विषय बनाया है उसमें पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की कोई बात नहीं, उसके अनुसार कोई विशुद्धि बढ़ती कम होती है ऐसी बात नहीं। हाँ, सातवां नरक का नारकी हमने पहले देखा था ना, मनुष्य धीरेन जब कृष्ण लेशा वाला नहीं आएगा, परंतु जिस नरक में जो लेशा है उसके परिणाम अपने पूर्व परिणाम से वो भी अनंत गुणा ये मंदता की ओर हो रहे और उसके भी प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होगी, तो उसके पूर्व उसके भी विशुद्धि ऐसी बढ़ रही है, सब लोग जीवन में होगा। ये तो इससे तो पता चलता है ना कि कितने अलग अलग जीव अलग अलग जो परिणाम है तो वो ये करण लग्नि मान सकते हैं, ख्याल है ना, और समय को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ जो परिणामों की समानता होगी अनिवृत्तिकरण में, तो उसमें भी वो हरेक की लेशा अलग होगी, हरेक का शरीर अलग है, गति अलग है, उसके जो उदय रूप दशा है, किसी का प्रयोगमान मार्ग जो कुछ है वो सब अलग अलग होंगे, फिर भी ये जो परिणामों में जो निर्मलता चलती है उसकी समानता हो जाए। वो यहाँ नहीं है, वो तो अन्य परिणामों की बात है, ये तो करण लब्धि के परिणामों में यहाँ नहीं लेना उसको।